समाधान समाधान समाधान।
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, पति पत्नी का रिश्ता बड़ा ही सुंदर है, रोचक है और उसमें थोड़ी बहुत खिटखिट जब होती है तो बड़ा मजा भी आता है। एक बार पति पत्नी बाजार में जा रहे थे तो एक गधा खड़ा हुआ था। पति को मजाक सूझा और उन्होंने कहा अपनी पत्नी से कि देखो तुम्हारा रिश्तेदार खड़ा हुआ है, प्रणाम तो करो इनको। तो पत्नी ने भी बड़े अदब से झुक के प्रणाम किया, ये कहते हुए कि प्रणाम ससुर जी। तो बड़ा अच्छा लगता है जब पति पत्नी के बीच थोड़ा नोक झोंक होता रहता है। लेकिन यही नोक झोंक यदि बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो कई बार परिस्थितियां बिगड़ सी जाती हैं और व्यक्ति सोचता है कि काश मैं फिर से अविवाहित बना दिया जाऊं। शादीशुदा जिंदगी से कई बार वो तंग आ जाता है। एक बार एक व्यक्ति जो शादीशुदा था वो भगवान से बहुत ज्यादा प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान, तू प्रकट हो और कुछ कर मेरे लिए। भगवान उसकी प्रार्थना से प्रकट हो गए, बोला कि मांग बेटा, क्या मांगता है। तो उस शादीशुदा व्यक्ति ने कहा कि प्रभु मुझे शादीशुदा से फिर से अविवाहित बना दो। तो भगवान ने कहा, बेटा मैंने मन्नत मांगने के लिए तुझे कहा था, जन्नत मांगने के लिए थोड़ी कहा था। तो कई बार जन्नत वाली जो बात है शादीशुदा स्थिति में नहीं हो पाती, लेकिन समाधान कार्यक्रम का लक्ष्य ये है और लगातार जो हमारी चर्चा हो रही है उस चर्चा का ध्येय यही है कि शादीशुदा जिंदगी को, पति पत्नी के बीच के संबंध को ऐसा सुमधुर बना दिया जाए कि परिवार हमें जन्नत महसूस होने लगे। यही कारण है कि लगातार हम इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं कि कैसे जो कारण है जो हमारे संबंधों में खटास लाते हैं उसे दूर करें और संबंधों को सुमधुर बनाएं। ऐसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, भ्राता जी का अभिनंदन करते हैं। भ्राता जी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। भ्राता जी, कई बार वैसे स्थितियां बिगड़ जाती हैं तो ये जन्नत वाली स्थिति नहीं बन पाती और ध्येय तो यही है हमारा कि हम घर घर को जन्नत बना दें, कैसे ये संभव हो।
वास्तव में पति पत्नी के नातों में होना ये चाहिए कि दोनों एक दूसरे के गुड फ्रेंड बन जाएं। और फ्रेंडशिप एक बहुत सुंदर चीज है, इसको केवल वासनात्मक रिलेशनशिप न बनाएं। एक दूसरे की भावनाओं को सम्मान देना, एक दूसरों के विचारों को सुनना, अपनी बात बहुत सम्माननीय ढंग से कहना। और जैसे ये बात हुई, पति ने मजाक किया, पत्नी ने भी मजाक कर दिया, ऐसे लाइट रहना ये बहुत जरूरी होता है। एक सीरियस स्थिति जब आ जाती है ना, अब वो वहाँ बिगड़ जाती, मेरा संबंधी है तो तुम्हारा भी तो होगा, ये वो, और वहीं से मूड ऑफ करके मैं तो जाती हूँ वापिस, क्यों लाए मुझे बाजार में, इंसल्ट करने लाए क्या मेरी। लेकिन उसने उस बात को आनंद का विषय बना दिया। तो यही चीज है, बस हम गुड फ्रेंड बने और एक दूसरे से बहुत लाइट हो जाएं, तो संबंधों में जो बहुत मधुरता आएगी उससे परिवार में खुशहाली रहेगी और विशेषकर बच्चों पर, जिनका भविष्य बहुत सुंदर होना चाहिए, गहरा प्रभाव पड़ेगा। युवक ऐसे आते ही रहते हैं कि बचपन से ही माँ बाप के बीच कटुता देखकर उनके जीवन में नीरसता आ गई और आज वो अपने जीवन को आनंदित महसूस नहीं कर रहे हैं। आज ही एक युवक मिला, बीटेक कर रहा है, उसकी ये समस्या थी, माँ उसको लेकर आई कि डिप्रेशन में जा रहा है, फेल भी हो चुका है एक बार। तो माँ बाप को ये सिचुएशन समझते हुए कि उनकी इस मनोदशा का प्रभाव बच्चों की मनोदशा पर पड़ता है, बहुत ही स्वीट, सौम्य और फ्रेंडली रहना चाहिए।
भ्राता जी, कल जैसे हमारी बात हो रही थी, ये जो जन्नत वाली स्थिति है तब तो बहुत अच्छी है कि हम दोस्ती बना के रखते हैं, लेकिन बात हमारी जो चल रही थी अफेयर्स वाली, जहाँ ये वाली बात आ जाती है वहाँ पे संबंध बिगड़ने लगते हैं। एक स्थिति ये देखा गया भ्राता जी कि कई बार परिवार के दबाव में लड़का या लड़की शादी कर लेते हैं, लेकिन वो उनकी इच्छा के अनुसार नहीं होता, उनकी कहीं और मतलब रहता है, प्यार रहता है। तो वहां उन्होंने शादी तो कर ली लेकिन प्यार वो बना रहता है। अब जब ये बात पता चलता है या तो पति को या पत्नी को, तो वो स्थिति दरार वाली आती है। दूसरा, कई बार ये देखने में आता है कि लड़का या लड़की इसलिए शादी कर तो लेते हैं, एक पारिवारिक दबाव, और दूसरा ये कि करियर वाइज या अच्छा बिजनेस है, ये सब देखते हुए परिवार देखे कर लेते हैं, लेकिन प्यार कहीं और होता है, तो यहाँ संबंध फिर बिगड़ते हैं।
देखिए, ये तो आजकल कॉमन चीज हो गई है। स्टूडेंट्स जब हैं, युवा काल में जब प्राणी है, तो उसका नाता कई जगह रहता है और वो आपस में बहुत प्यार के संबंध बना लेते हैं, लेकिन कल ही मुझे कोई बता रहे थे बहुत अच्छे, उसने कहा 70% लव मैरिज असफल हो रही हैं और होती ही है, क्योंकि युवकों में जो प्यार होता है आपस में वो बड़ा इमोशनली किसी भी चीज को देखकर कहीं एक दूसरे को मदद कर दी उसके कारण जो कुछ भी है, लेकिन वो चीज आगे नहीं बढ़ती। जैसे बहुतों के साथ हुआ कि लड़के का लड़की से बहुत प्यार था, लड़की बहुत अच्छे घर की, उसे पता नहीं था लड़के का क्या है, वो गरीब परिवार का, शादी करके कोर्ट मैरिज करके वो उसके साथ चली गई, घर में जाके देखा तो उसको तो एक छोटा सा मकान है, माँ है अकेली, बस वो कैसे तैसे मजदूरी करके उसको पढ़ा रही है। तो वहां जाते इसके होश आवास उड़ गई, मैंने क्या कर दिया, अब माँ बाप को क्या कहे, जैसे तैसे करके घर माँ बाप के गई, अभी बाप कहे दरवाजा बंद, लेकिन माँ रोने धोने लगी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, घर में एक बहुत बड़ा टेंशन हो गया। ऐसे बहुत सारे केसेज होते रहते, और यही बात जब शादी होने के बाद जब उनकी रेंज शादी हो जाती है और एक दूसरे को पता चलता, चल तो जाता ही है, कभी कभी वो स्वयं भी बता देते हैं कि देखो भाई हमारा प्यार तो वहां था, और आजकल क्योंकि कॉमन बात है तो वो एक दूसरे से ये बात भी कर लेते हैं, तुम्हारा कहीं था क्या, तुम्हारा कहीं था क्या, और वो करते तो बड़े फ्रेंडली हैं, पर जब उन्हें पता चलता है एक दूसरे का तो फिर संबंधों में जरा कड़वाहट आने लगती है। ये आजकल हो गया है, अभी इस बात को भी हमारे युवकों को बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि मैरिज से पहले चाहे कुछ भी था उनके साथ, किसी से भी उनका प्यार था, लेकिन अब मैरिज हो गई, अब उन्हें अपना जीवन ठीक से निर्वाह करना है। नहीं तो क्या होता है, लड़की अगर पुनः पीछे की ओर देख रही है, उससे उसका कम्युनिकेशन बना हुआ है, दो परिवार टूटते हैं, ऐसे बहुत सारे केसेज हो चुके हैं, और थोड़े दिन के बाद क्या होता है, इनका जीवन, मैं शब्द कहाँ से ढूंढ के लाऊं, मतलब दुखी और अशांति से भरपूर हो जाता है। ऐसे लोग कहीं के भी नहीं रहते, जैसे मैंने कहा कि लव मैरिज सफल हो ही नहीं रही, थोड़े दिन में वो असफल हो जाती है, एक दूसरे से घृणा हो जाती है, एक दूसरे को छोड़ देते हैं, पहले भी छूटे ये भी छूटे, जीवन बेकार हो जाता है। ऐसे हजारों केस हैं आजकल, इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक बच्चों को युवकों को बहुत ही समझदारी पूर्वक अपने माँ बाप को साथ लेते हुए, केवल मैं जो चाहूँ वही हो, इससे या तो डिप्रेशन होता है या फिर परिवार ब्रेक होते हैं, बहुत कुछ निगेटिव होने लगता है। इसलिए ठीक है युवा काल में जहाँ भी आपका अफेयर रहा, अब मैरिज आपकी हो गई, अब पास्ट को पास्ट करके फ्यूचर की ओर चलें, आपको अपने कार्य संभालने अच्छी तरह, आपके पास बिजनेस है उसे संभालना है, आप एक अच्छे पद पर पहुंच गए हैं उसमें आपको वो प्रोग्रेस करनी है, प्रमोशन आपके होंगे, आप बहुत अच्छी तरह उस पर फोकस करें, इन चीजों पे फोकस न करें, नहीं तो क्या है मन बुद्धि की शक्तियां डिवाइड हो जाती है और किसी भी फील्ड में मनुष्य आगे नहीं बढ़ पाता।
बिल्कुल, कई बार व्यक्ति जानता तो है बेटा जी कि वो विवेक से या बुद्धि से समझ जाता है कि ये ठीक नहीं है, लेकिन दिल कई बार साथ नहीं देता है, तो ऐसे में बार बार उधर खिंचाव होता रहता है। जैसे एक मेल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा जो आया है हमारे पास, ये कहते हैं कि मेरी एंगेजमेंट और शादी के बीच में थोड़ा गैप था, लगभग 5 साल का अंतर था, और शादी के 8 महीने पहले मेरे हस्बैंड का कहीं अफेयर शुरू हो गया था। अब शादी हमारी हो गई, लेकिन शादी होने के बाद वो पति पत्नी जैसा हमारा संबंध नहीं रहा। अब जब मैंने इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि इनका संबंध कहीं और है, और उस लड़की से ही अब वो पुनः शादी करना चाहते हैं। अब परिवार के दबाव में तो उन्होंने मुझसे शादी कर ली, लेकिन अब वैसे हमारे रिलेशन नहीं है, वो वही शादी करना चाहते हैं, लेकिन अब वो लड़की भी तैयार नहीं है। हम बहुत कोशिश कर चुके हैं कि वो वहां से उनकी बुद्धि हटे, लेकिन उनकी बुद्धि बार बार वहां जाती रहती है, वो कई बार रोने भी लगते हैं, डिप्रेशन में भी आ जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए?
हाँ, ये परिस्थिति बहुत ही भयानक होती है। ये जो दैहिक प्यार है ये मनुष्य को बुरी तरह अपने चंगुल में फंसा लेता है। अब देखिए इस लड़के की स्थिति ये होगी कि वो सब समझता भी है कि नहीं ये मैरिज होगी, इसका जीवन बेकार जाएगा और पता नहीं आगे का जीवन कैसा चले, परंतु वो अपने को कंट्रोल नहीं कर पाता है। इसी में स्पिरिचुअल पावर मनुष्य को बहुत ज्यादा मदद करती है, जब हम आत्मिक दृष्टि का ज्ञान देते हैं, क्योंकि ऐसे केस हमारे पास कई आ चुके हैं। अब वो प्रत्यक्ष तो नहीं किए जाते, न उसकी ज्यादा चर्चा की जाती, पर युवक लड़के और लड़कियां जब ये समस्या लेकर आते हैं और उन्हें फील होता है कि हम बुरी तरह फंस चुके हैं, जिसे बुद्धि योग वहां से हट ही नहीं रहा है, बरबस हम खींचे चले जा रहे हैं, कल कुछ भी हो सकता है, उन्हें अनेक केसेज का पता भी चलता है कि देखो ऐसे हुआ था, फिर डिवोर्स हो गया, गड़बड़ हो गई, पूरे परिवार टूट गए, डिप्रेशन में आ गए लोग, माँ बाप पर बहुत बुरा असर होता है उसके बाद। मान लो ये लड़की ये यहाँ से जाती है अपने घर जिससे इसने मैरिज की है, अब उसकी तो कोई गलती नहीं बेचारी की, तो उसके माँ बाप पर भी बुरा असर होगा। अगर उसका फादर और भाई थोड़े वायलेंट नेचर के, एग्रेसिव नेचर के, तो और कुछ भी कर सकते हैं, मारपीट करते हैं, केस करते हैं, और कुछ भी लांछन लगा देते हैं कि हमारी लड़की को टॉर्चर किया गया है दहेज के लिए, उसके लिए, और लगाओ इसको बदला लेना है इससे,
मतलब तो एक
बहुत बुरी दशा मनुष्य की आ जाती है। तो हम ये सिखाते हैं कि आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करो, वो भी आत्मा, मैं भी आत्मा, इस आत्मिक फीलिंग्स से ये जो बॉडी कॉन्शियसनेस का बहुत ज्यादा पुल जैसा होने लगा था ये कटने लगता है। और दूसरा एक स्वमान का अच्छा अभ्यास कर ले, जो हमारा एक पॉपुलर स्वमान हो गया है, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूं, इसे ही ले लें, सवेरे उठते 21 बार याद कर लें, ज्यादा नहीं तो, तो इससे आत्मा में बल भी आ जाएगा और जो एक चीज बहुत खिंचाव पैदा कर रही है उसे छूट जाएंगे। अब देखिए वो लड़की भी अब नहीं चाहती, क्योंकि वो समझदार है, वो देख रही है कि इसकी मैरिज हो चुकी है, मैं उस लड़की का जीवन भी बर्बाद करूं और पता नहीं मेरा भी चले या नहीं। फिर मनुष्य सोचता तो है ना, कल किसी और से हो गया इसका तो ये मेरे साथ भी ऐसा ही व्यवहार करेगा, और ये प्राय हो जाता है जिसको ऐसे अफेयर रखने की आदत पड़ जाती है ना, आज एक से है, कल दूसरे से, परसों तीसरे से। तो ये लड़की बहुत ही समझदार है, हमें इसको अप्रिशिएट करना है। तो उस इस लड़के को समझदार बनना है, इसके माँ बाप से भी इससे बात करनी चाहिए और बीच में माँ बाप को भी ले लेना चाहिए, ताकि उनका बल भी इनके साथ रहे, वो इनके साथ रहें, नहीं तो आगे चल के जीवन खराब हो जाता है। तो ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस यदि करेंगे तो ये वहाँ से मुक्त होंगे और दोनों परिवार सुखी हो जाएंगे।
चलिए, कामना तो हमारी भी यही रहती है बेटा जी, कि है सब कुछ खुशहाली से हो जाए, क्योंकि एक तरफा प्यार कई बार बहुत ज्यादा परेशानी का सबब बन जाता है। ये देखा गया बेटा जी सर्वे के अनुसार, कल मैं आपके सामने सर्वे रख रहा था, कि 60% जो अफेयर्स हैं वो वर्क प्लेस पे शुरू होते हैं, क्योंकि हम वहां जाते हैं, अपने जो कलीग्स हैं उनके साथ हमारी बातचीत होती है, सुख दुख की लेन देन होती है, तो पता ही नहीं चलता कि कब हमारा प्यार हो गया और कब हमारे कदम थोड़े से दहलीज से बाहर निकलने लगे। तो यहाँ की स्थिति में कैसे अपने आप को संभाला जाए?
ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है कि मान लो मनुष्य को घर में कोई टेंशन है, अब वो किसी को सुनाएगा जरूर, जब तक वो न सुनाए उसका मन भारी भी रहता है, क्योंकि दुनिया में सुनने वाले भी बहुत कम हैं। तो जो उसके साथ ही काम कर रहे हैं, वो स्त्री है या पुरुष है, उसको वो जरूर सुनाता है, साथ में ही रहते हैं, एक दूसरे से लेन देन होता ही है मनुष्य का, और ये ह्यूमन नेचर है और ये अच्छी भी है। लेकिन कहीं कहीं ये प्यार में बदल जाता है, और ये भी बड़ी नेचुरल सी चीज है कि जिसके हम समीप आएंगे उससे अपनापन फील होगा, पहले अपनापन फील होगा, फिर वो इस प्यार में बदल जाता है दैहिक में। तो इसमें भी देखिए ये बातें तो सब ठीक है, पर तो हमें बीच में स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को छोड़ना नहीं चाहिए। कम से कम हम इतना जरूर याद रखें, हम एक परमपिता की संतान हैं दोनों, हम दोनों ही आत्माएं हैं। ये फीलिंग अगर हम रखेंगे तो ये सब कुछ अच्छे रिलेशनशिप रखते हुए भी हम कहीं फंसेंगे नहीं। और देखिए मनुष्य फंस कर कुछ बुरा कर्म तो कर लेता है, लेकिन हर ऐसे कर्म के बाद मनुष्य को पश्चाताप तो बहुत होता ही है, क्योंकि उसकी इनर कॉन्शियंस उसके अलाव तो नहीं करती। वो ये भी सोचता है मेरी बड़ी लड़की है, वो घर में जाके सोचेगी जरूर, मेरी बड़ी लड़की है, वो भी तो कहीं जॉब कर रही है, वो कहीं ऐसा करने लगी, वो भी तो आज स्टूडेंट है, वो भी ऐसा करने लगी, तो क्या होगा। तो जैसे वो घर आएगी उसका विवेक चालू हो जाएगा काम करना, और उसको डिप्रेशन की ओर ले चलेगा, उसकी खुशी नष्ट हो जाएगी, वो किसी को बता भी नहीं पाएगी, और अगर बता दिया तो विस्फोट की स्थिति हो जाएगी, ऐसा कई जगह हो जाता है। इसलिए ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस थोड़ी सी, सभी जो आपस में कार्य कर रहे हैं, अब सब साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, हर फील्ड में बहनें भी आगे बढ़ रही हैं, पुलिस में भी, मिलिट्री में भी, और भी जो फील्ड हैं सब रिसर्च में भी, तो मैं आत्मा हूं और अपने परम पिता की संतान हूं, सब आत्माएं हैं। इतनी छोटी सी प्रैक्टिस करते रहने से एक डिटैचमेंट की स्थिति,
बिल्कुल। लेकिन बताइए जी, कई बार ऐसा देखा गया है, ज्यादातर केसेस में ये देखा जाता है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि विवेक से या दिमाग से तो सभी इस बात को समझते ही हैं कि ये गलत है, नैतिक दृष्टि से गलत है, सामाजिक दृष्टि से गलत है, लेकिन कई बार वो कहते हैं ना कि दिल है कि मानता नहीं वाली स्थिति हो जाती है, कि दिल किसी पे आ गया और जीवन में कभी ना कभी कहीं ना कहीं ऐसा होता ही है कि कोई व्यक्ति हमें अच्छा लगने लगता है, उसके गुण, उसकी विशेषताएं, उसका बोलना, उसका चलना, और वहां हमें प्यार हो जाता है, वहां हम बहुत कोशिश करते हैं फिर भी हमारा दिल उस पे आ जाता है, यहाँ फिर कैसे करें?
इसका एक ही कारण है जो ईश्वरीय ज्ञान से हमने जाना है कि इस समय मनुष्य के अंदर बॉडी कॉन्शियसनेस बहुत बढ़ा हुआ है। इस बॉडी कॉन्शियसनेस के अधीन होने से विवेक शक्ति निर्बल हो जाती है। यही जिसको दूसरे शब्दों में लोग कहते हैं कि बुद्धि से तो समझ रहे हैं लेकिन दिल लगा हुआ है, यानी बुद्धि के पास एक कंट्रोलिंग पावर नहीं है। इसको हम अपनी स्पिरिचुअल लैंग्वेज में इस तरह कहेंगे कि बुद्धि की कंट्रोलिंग पावर बहुत वीक पड़ गई है, कि मनुष्य की विवेक शक्ति काम तो कर रही है पर वो जैसे विवश हो गया है उस आकर्षण के। इसमें दूसरे व्यक्ति का भी रोल होता है और अपना भी होता है। दूसरा व्यक्ति बहुत अट्रैक्ट करने लगता है और स्वयं भी बॉडी कॉन्शियसनेस होने के कारण अट्रैक्शन होने लगता है। इसलिए बस मनुष्य को थोड़ी सी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, जो हम बार बार कह रहे हैं, जब वो कार्य पर चले थोड़ी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, थोड़ा राजयोग मेडिटेशन करके चले, और एक बहुत अच्छे विचार के साथ अपने परिवार को भी ध्यान में रखते, क्योंकि ऐसे केस कभी कभी तब भी हो जाते हैं जबकि बड़ी आयु हो गई है, तो इससे बचना चाहिए। मैंने एक बहुत बुरा समाचार आज ही सुना, कोई सुना रहे थे, न्यूज में आया होगा टीवी पर, कि देखिए एक माँ से उसके लड़के का ही अवैध संबंध हो गया और बाप ने कहीं देख लिया तो उसका मर्डर करा दिया, तो हाहाकार हो गया चारों ओर, पता तो फट से चल जाता है। अभी कितनी बुरी स्थिति हो गई, वो भी जेल में, उसकी मृत्यु, परिवार नष्ट हो गया। तो ये देह अभिमान इतना बढ़ गया है और ये कलयुग का प्रकोप इतना बढ़ गया है कि इसमें जो सबसे पवित्र ये नाते थे वो भी जैसे नष्ट होते हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो अब समय की ये मांग है इस कलयुग के वातावरण को, इसके प्रभाव को थोड़ा न्यूट्रल करने के लिए ये मांग है कि मनुष्य अपनी प्योरिटी के बल को आगे बढ़ाए, वो स्पिरिचुअलिटी की ओर आगे बढ़े, तो इस बहुत बुरी चीज से जो समाज को खाने के लिए तैयार है हम बच सकते हैं।
बिल्कुल, एक सिचुएशन और हमारे सामने है व्रता जी, वो उसको भी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। मेल के रूप में हमारे पास आया है, ये कहती हैं कि मैं आपका समाधान प्रोग्राम लगातार देख रही हूं और 15 साल हो गए हैं मेरी शादी को, 2 बच्चे हैं, 13 साल की बेटिया है, 9 साल का बेटा है। 4 मास पहले तक मेरा जो वैवाहिक जीवन था बहुत ही मधुरता से बीत रहा था, लेकिन अचानक मुझे पता चला, 4 मास पहले ही मुझे पता चला कि मेरे पति का कहीं और अफेयर है, और ये बात उस लड़की ने आके ही मुझे बताई। अब मेरे पति ये बात मुझे बताना तो नहीं चाहते थे, लेकिन अब ये बात क्लियर हो गई है। अब पति बहुत ही मेरे लविंग है, केयरिंग है, उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ मुझे नहीं दी 15 सालों में। अब वो ये चाहते हैं कि तुम सब भी मेरे साथ रहो और वो लड़की भी हमारे साथ रहे, लेकिन वो लड़की ये चाहती है कि मेरा जो पति है वो मुझे डिवोर्स दे दे और वो उसके साथ रहे। अब ये इस उहापोह की स्थिति हो गई है कि क्या किया जाए। मैं ये बात अपने इन लॉज को भी नहीं बता सकती, पेरेंट्स को भी नहीं बता सकती, क्योंकि वो बुजुर्ग हो गए हैं और शायद इस सदमे को वो बर्दाश्त ना कर सकें, तो मैं ये बात कहीं भी शेयर नहीं कर पा रही हूँ, कृपया इसका समाधान बताएं। बहुत ही क्रिटिकल से स्थिति।
देखिए, 2 परिवार टूटने के कगार जी, और बहुत ही बिल्कुल, अगर सास ससुर को ये बात पता चल गई तो हो सकता है वो एकदम
बिल्कुल बुजुर्ग जैसी
हार्ट अटैक भी उन्हें हो सकता है। इस व्यक्ति को बहुत समझदार होना चाहिए, क्योंकि यही बात हो गई कि एक बुद्धिमान व्यक्ति आजकल इन वासनाओं के इतना ज्यादा अधीन हो चुका है कि वो नैतिकता और सामाजिक जो कुछ भी होता है, समाज से भी तो लोग डरते हैं ना भाई, लोग क्या कहेंगे, आजकल लोग उससे भी नहीं डर रहे हैं, इतनी ये भयावह स्थिति हो गई, उनके बच्चे भी तो बड़े हो गए तो उनका भी ख्याल नहीं कर रहे हैं, और वो चाहता है उसको वहां से डाइवोर्स दिला के अपने घर में रख लो। आप जानते हैं 2 अगर साथ में रहने लगे
जी, उस इन्होंने कहा है, मेल लंबा है, मैंने थोड़ा सा ही पढ़ा, उस लड़की की आयु इनकी आयु से बिल्कुल आधी है, इनकी एज 45 है और लगभग उसकी 21 या 22 साल की उम्र है,
तो बिल्कुल समाज भी तो स्वीकार नहीं करे, और एक बद दुआएं इनकी ओर सबकी तरफ से आने लगेंगी। इसलिए मैं इस बहन को कहूंगा, तुम बहुत समझदार हो और आप अच्छे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करो, सवेरे उठकर एक आधा घंटा राजयोग का अभ्यास करके अपने पति को गुड वाइब्रेशंस दो, और जो हम एक बहुत अच्छी विधि सिखाते हैं कि 5 बजे सवेरे जब वो व्यक्ति सोया है उसको 10 मिनट अच्छे वाइब्रेशंस देकर माइंड टू माइंड उससे बात करो, क्योंकि तब उसका सबकॉन्शियस माइंड जगा है, कहीं ना कहीं उस सबकॉन्शियस माइंड में छुपी हुई प्योरिटी तब उसकी काम करेगी। तो उसको संकल्प दो, तुम बहुत अच्छी आत्मा हो, तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुम तो बहुत समझदार हो, ये तुम क्या कर रहे हो, उस परिवार को भी नष्ट करोगे, हमारे बच्चों पर भी कितना बुरा असर पड़ेगा, इस बात को छोड़ दो, अपने इसी जीवन को एंजॉय करो, हमारा भविष्य बहुत सुंदर हो, हमारे बच्चों का भविष्य बहुत सुंदर हो, तुम बहुत समझदार हो, ये फीलिंग देते हुए माइंड टू माइंड उससे बात करेंगे, तो सबकॉन्शियस माइंड उसका रिसीव करने लगेगा और जो योग के वाइब्रेशंस उसको जाएंगे उसके अंदर आत्म जागृति आएगी, उसके जो प्योर संस्कार हैं आत्मा के मूल वो जागृत होंगे और बिल्कुल निश्चित रूप से 7 दिन करने के बाद ही उसके विचारों में परिवर्तन आएगा। और ये भी सिचुएशन हो सकती है कि वो वहां से छूटे ही नहीं, पति उसको डिवोर्स दे ही नहीं, तो दोनों परिवार सुरक्षित हो जाए।
बिल्कुल, ये स्थिति ऐसी है ब्रदर जी कि ये इन्हें भी रखना चाहते हैं, उन्हें भी रखना चाहते हैं, मतलब वो लड़की तो अभी अनमैरिड है और वो चाहते हैं कि ये अब मैं इनको भी साथ रखूं और उनको भी इनके साथ रखूं, मतलब ये मेरी पत्नी, मेरे दोनों बच्चे, मैं और वो भी, हम सब साथ साथ रहें, ये ऐसी इनकी तमन्ना है, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है?
बहुत ही खराब ये स्थिति बन जाएगी परिवार में, ये नहीं जानते क्योंकि वो तो वासना के अधीन हो चुका है, लेकिन इनके बच्चे निश्चित रूप से अब से ही डिप्रेशन में आने लगेंगे, क्योंकि वो व्यक्ति अब बच्चों की ओर बिल्कुल केयर नहीं करेगा, उसका संपूर्ण ध्यान उस लड़की की ओर होगा। वासनाएं ऐसी चीज है जो मनुष्य को निर्लज्ज बना देती है, घर में वो गंदी एक्टिविटी करेंगे, बच्चे बहुत बुरी स्थिति में पहुंच जाएंगे और पति भी, पत्नी भी डिप्रेशन में आ सकती है और निश्चित रूप से उसे अपने घर जाके कम से कम अपने माँ बाप को तो बताना ही पड़ेगा कि भाई ये सिचुएशन है, बोलो मैं क्या करूं। तो एक बहुत ही दयनीय स्थिति है, इसलिए स्पिरिचुअली इसको ठीक कर लेना चाहिए इस बहन को, क्योंकि बहुत समझदार है और पुरुष निश्चित रूप से एक दयनीय स्थिति में पहुंच गया है, उसको भी हम तो कहेंगे शिव बाबा सद्बुद्धि प्रदान करे और इस मोह, इस गहरी वासनात्मक माया से मुक्त हो जाए।
बिल्कुल, कई बार एक कंडीशन ये भी आती है ब्रदर जी, जैसे एक चर्चा हमारी हुई थी कि चलो हमने दबाव में हमने शादी कर ली, कहीं और प्यार था, हमारी इच्छा के अनुसार वो नहीं हो पाया। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा सामने वाला जो साथी है, चाहे वो पति है या पत्नी है, वो गुड लुकिंग नहीं है, देखने में अच्छे नहीं है या स्वभाववश अच्छे नहीं है, तो भी ये बाहर हमें प्यार ढूंढने की इच्छा होने लगती है। शारीरिक सौंदर्य की बात होती है, अवगुणों की भी बात जब सामने आ जाती है तो बाहर मन जाने लगता है। यदि ऐसी स्थिति किसी के साथ होगी, पति या पत्नी गुड लुकिंग नहीं है, देखने में अच्छे नहीं है या स्वभाव से कर्कश है, बहुत ज्यादा क्रोधी है, यदि ऐसी स्थिति है तो फिर मन मेरा बाहर ना जाए, इस स्थिति में ही मैं सेट रहूं, कुछ किया जाए?
इसमें तो राजयोग ही मदद करेगा कि मनुष्य उस चीज को स्वीकार करके अपनी मनोस्थिति को श्रेष्ठ रखे, क्योंकि जिस वासना के गंदे मार्ग पर ये लोग चलते हैं इस तरह से, उन्हें वहां भी वैसी इस परिस्थिति मिल सकती है, तीसरी जगह जाएंगे वहां भी वैसी परिस्थिति मिल सकती है। और ये बातें बहुतों के साथ हो चुकी हैं, लोग हमें सुनाते हैं कि इसी कारण से हम बाहर गए, वहां उससे भी बुरा हाल मिला, थोड़ा दिन हमें अच्छा लगा, फिर देखा कोई देखने में ही सुंदर हो, यही सब कुछ नहीं होता, कर्कश हो बिल्कुल, उसका स्वभाव ऐसा हो, वायलेंट हो, तो मनुष्य वहां भी बहुत दुखी हो जाता है और फिर तीसरी जगह गए वहां भी यही मिला कि लौट के घर में आके डिप्रेस हो गए। इससे कोई फायदा नहीं, अब इन सब वासनाओं को छोड़कर हम सभी आत्माएं बहुत पवित्र हैं, देखिए भगवान देवकुल की स्थापना करने आए हुए हैं, उसको बहुत अच्छी तरह पता है ये वासनाओं की काली आंधी चल रही है संसार में, अब इसको समाप्त करने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ा है। निश्चित रूप से जो संसार की वर्तमान स्थिति है, कलयुग के अंत का बिल्कुल स्पष्ट लक्षण है, प्रकोप हो गया है, तो भगवान के उस कार्य में हम सहयोग दें, अपने मूल स्वरूप को पहचाने और ये जो शांत करने वाली चीजें संसार में चल रही, फिर कोर्ट केस होते हैं, अनेक बातें होती हैं, सारा धन उधर चला जाता है, इस सब से बचें और जीवन को एंजॉय करें।
कैसे सुधार हो, समाधान तो खैर इसी के लिए मंच बना हुआ है, इसीलिए सारे आंकड़े मैंने आपके सामने रखे हैं। बहुत सुंदर आज आपने प्रकाश दिया है ब्रदर जी, कुछ और शेष बातें रह गई हैं। लक्ष्य तो यही है कि घर घर में खुशहाली हो, शांति हो, घर घर जन्नत बने, जहां से मैंने शुरुआत की थी, लक्ष्य यही रहेगा। इसीलिए इस पे कुछ और जो शेष बातें रही हैं कि कैसे परिवार में एक दूसरे के लिए प्यार हो, जरूर मैं चाहूंगा कि आपसे और प्रकाश ने आज की सुंदर चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, शुरुआत ही हमने की थी जन्नत से, अर्थात स्वर्ग से। हर एक की कामना होती है जीते जी या मृत्यु के पश्चात हम जन्नत में जाएं, स्वर्ग में जाएं। अब मरने के बाद स्वर्ग में जाता है या नहीं जाता व्यक्ति, वो तो दूर की बात है, वो अब जिस जो गया नहीं गया वो जाने। लेकिन यहाँ संसार में रहते हुए ही, परिवार में रहते हुए ही अपने घर को जन्नत बनाया जा सकता है। और उसके लिए हमें आपसी समझ की आवश्यकता होगी, आपसी विश्वास की आवश्यकता होगी, और साथ ही जैसे ब्रदर जी लगातार हमें कहते हैं कि अध्यात्म की आवश्यकता होगी। क्योंकि कोई कहता है कि कई बार रिश्ते नशा बन जाते हैं, और कई बार लोग कहते हैं कि रिश्ते सजा बन जाते हैं। लेकिन यदि रिश्तों को सही ढंग से, सही अर्थों में निभाया जाए तो यही रिश्ते जीने की वजह भी बन जाते हैं। तो क्यों ना हम अपने रिश्तों को जीने की वजह बनाएं, इतना इसमें प्यार घोलें, एक दूसरे के लिए इतना सम्मान, इतना स्नेह, और साथ ही इतना सहयोग रखें, एक दूसरे के ऊपर इतना विश्वास हो कि सचमुच ये रिश्ते हमारे लिए जीने की वजह बन जाएं। क्योंकि कहते हैं कि आई लव यू कहने में केवल 3 सेकंड लगता है व्यक्ति को, और 3 घंटे लगते हैं उसे ये समझाने में, क्लियर करने में कि मैंने क्यों तुम्हें आई लव यू कहा या क्यों मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। लेकिन इस आई लव यू को प्रूव करने में पूरा जीवन लग जाता है। तो हम यदि किसी से ये कहते भी हैं, और जब कभी ये संबंधों की समीपता की बात आती है ना, पति पत्नी की, तो सचमुच इसे हमें निभाने की आवश्यकता है, तभी हम घर को जन्नत बना सकते हैं। और ये आपसी समझ से और आध्यात्मिक ज्ञान से और योग से ही संभव है। इस विषय को आगे भी भ्राता जी के साथ जारी रखेंगे कि कैसे ज्ञान योग के माध्यम से हम घर को खुशहाल बना सकते हैं, सुखी बना सकते हैं, शांत बना सकते हैं, जानेंगे अगली कड़ी में। आप बने रहिएगा हमारे साथ समाधान कार्यक्रम में, और साथ ही अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।
धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, पत्नी संकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान,
सारा ये जहान
कहता है ये समाधान, समाधान, समाधान।